इसलिए जरा सी सख्ती, इन फिरू खिफाफम वसिकालन, निकल खड़े हो जाओ हल्के फुल्के हो तो भी और भारी भरकम हो तो भी। यानी आसान है निकलना तो भी निकलो, मुश्किल है तो भी निकलो, और आहे रब में अपने माल और जान से जिहाद करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। यानी जो सबके लिए बेहतर होगा वही करो। फिर ये ना कह दो कि नहीं मेरे से नहीं अब घर से निकला जाता, हाय अब मैं नहीं निकल सकती, अब मेरे लिए मुश्किल है। अगर जल्द वसूल होने वाला माल और असबाब होता और हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराज की मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम में कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। बातें बड़ी करते थे, ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं क्या दीन से पीछे रह के। इनके झूठा होने का सच्चा इल्म तो अल्लाह को है। अल्लाह के नबी बहुत मासूम थे, समझदार थे, लेकिन कनिंग नहीं थे। जो कोई कहता मान जाते, मान जाते, और लोग आपके सामने आके सच्ची झूठी बातें करके सच्चे हो जाते। साहबा को कभी कभी बड़ा गुस्सा भी आता था, देखो पीछे से क्या कहते हैं और आपके सामने क्या कह रहे हैं। इस पे अल्लाह ने कहा, फअल्लाहु अन कलिमा जिन तलखुम, अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, तूने इन्हें क्यों इजाजत दे दी। मोमिन भोला भाला होता है, इजी गोइंग होता है। अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि जरा थोड़ा सा इनसे छान फटक करके इनको ये रुख्सत दिया करें, ऐसे ही छुट्टी ना दे दिया करें। तूने इनको क्यों इजाजत दे दी बगैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और तू झूठे लोगों को भी जान ले। अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले माली और जानी जिहाद से रुक रहने की कभी भी तुझसे इजाजत तलब नहीं करेंगे, और अल्लाह तआला परहेजगारों को खूब जानता है। यानी सच्चे लोग कभी साथ नहीं छोड़ते, ना नबी का ना आज दीन का काम करने वालों का, क्योंकि उनको पता है कि मकसद प्यारा है। तो फिर कौन इजाजत मांगते हैं। इन्नमा यस्ताजिनुकल्लज़ीना ला यूमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वर्ताबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून। ये इजाजत तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान है ना आखरत के दिन का यकीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक ही में सरगर्दा है। अल्लाह हमारे दिलों में कभी शक ना आए इस हक के साथ। वलो अरादुल खुरूज, यानी अगर जाना हो तो बंदा कुछ तैयारियां तो करता है। कैसे? अगर इनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता तो इस सफर के सामान की तैयारी कर रखते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही ना था, इसलिए इन्हें हरकत से ही रोक दिया और कह दिया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे रहो। नोट कीजिए, जब दिल में ख्वाहिश होती है ना तो बंदा हल्के हल्के तैयारी कर रहा होता है, और एक वक्त आता है कि बंदा रुकता है, मैं नहीं जाता, मुझे वक्त नहीं, मेरे पास नहीं, ये नहीं, हर वक्त नया बहाना नया उजर। कभी बंदा बैठकर सोचे मेरे हालात कब ठीक होंगे, मुझे तौफीक ही नहीं मिल रही नेकी की, दौरे कुरान तक सुनने के लिए मैं उठकर नहीं बैठ सकती तो मैंने और क्या करना है, इसके लिए मैं कुरान सुनने के लिए स्कूल में नहीं आ सकती तो मैं कब आऊंगी, रोजा है कि नहीं, अभी अभी भी मेरे लिए मुश्किल है। तो कहीं वो वक्त ना आ जाए कि फिर अल्लाह रोक ले। शुरू में बंदा रुकता है, बाद में अल्लाह रोक लेता है। और कुछ लोगों के ना निकलने से लीडर का यानी अल्लाह के नबी का और मुखलसीन का दिल खट्टा ना हो, क्योंकि वलो अरादुल खुरूज के बाद अल्लाह क्या फरमाते हैं, लौ खरजू फीकुम मा ज़ादुकुम इल्ला खबाला, अगर ये तुम में मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज ना बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते यानी साजिशें करते और तुम में फितने डालने की तलाश में रहते। इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। कैसे अल्लाह अपने नबी को खबरें दे देता था कि आपके इर्द गिर्द सारे ही मुखलस नहीं है, कुछ फितनों के लिए आजमाइशों के लिए भी आपके पास आते हैं, और ये बात कोई नई नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसे मामलात पहले भी छेड़े थे। कैसे? आइए जरा तदब्बुर करते हैं और अमल के नुक्ते लेते हैं। ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिरिदाक मिन सखतिका व बिमुआफातिका मिन उकूबतिका व मिन तहव्वुली आफियतिका व फुजाति निकबतिका। पीछे हमने दुआ का शुरू का हिस्सा पढ़ा था, आज आखिरी हिस्से पे गौर कीजिए यहाँ तक कि ये दुआ याद हो जाए, क्योंकि क्या पता किस वक्त आफियत पलट जाए और हम किसी फितने में आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मतरूक सुन्नत तलाश करके इसको अपने अमल में लाएं, और आपके लिए बेहतरीन अमल हर रोज के पारे के साथ की सुन्नत है। आजजी और सुस्ती से अल्लाह की पनाह मांगिए, क्योंकि ये दोनों आदतें इंसान को इबादत से महरूम कर देती हैं। कुरान से रहनुमाई, गम इंसान को तोड़ देता है। और इसके इरादे और दिल को भी कमज़ोर कर देता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने गमों को हल्का रखें और खुश रहें। माल के जरिए जिहाद भी जिहाद ही की एक किस्म है। सिर्फ नेकी का इरादा काफ़ी नहीं, बल्कि इस इरादे को अमल से साबित कीजिए। गौर व फिक्र की बातें, आखिरत के आराम पर दुनिया के आराम को तरजीह नहीं देनी, क्योंकि आखिरत का आराम दुनिया में तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने से ही मिलता है। ज़रूरत के वक्त जिहाद से पीछे रहना गुनाहे कबीरा है, अकबरुल कबायर में से है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के साथी और सहाबी होने में सबसे ज़्यादा कामिल थे, और कोई दूसरा इनकी बराबरी ना कर सका। सोचिएगा क्यों? क्योंकि देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। अल्लाह दिलों में शक उनके डालता है जो लेने वाले होते हैं। देने वालों को तो कभी सोच भी ना आई। कभी कोई रंजो गम आए तो इसे दूर करने की कोशिश करें और अल्लाह से मदद मांगिए। यानी इसमें अमल की बात है कि अबू बकर सिद्दीक की तरह हमेशा हर नेकी में आगे बढ़िए। बंदे की इबादत का इरादा इसकी सच्चाई की निशानी है। जो हकीकत में अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो माल और जान के जरिए जिहाद को छोड़ देने के लिए उजर और बहाने नहीं करते। अल्लाह हमें उन्हीं में डाल दे। आगे अब कुछ बहाने करने वालों के अजीबो गरीब बहानों को देखते हैं। आयत 48 से, लकद इब्तगवुल फितनतु मिन कब्ल, ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे और तेरे लिए कामों को उलट पुलट करते रहे, यहाँ तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद इसके कि वो नाखुशी ही में रहे। बमिन हो मैं यकूल, और इनमें से कोई तो कहता है कि मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए, आगाह रहो वो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोजख काफिरों को घेर लेने वाली है। लिखिए जिहाद से दूरी, खुद को फितने में डाल दें, चाहे किसी भी नाम पे डाल दे। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए, इन तसिब का हसन तसूहुम, तो वो इनको बुरी लगती है, और अगर कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं हमने अपना मामला पहले से दुरुस्त कर लिया था, फिर तो बड़े ही तराते हुए लौटते हैं। यानी वो कहते हैं ना, गुड डेज फ्रेंड्स। ज़रा सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ आती तो बातें बनाते, और आपको ज़रा सा कोई खैर का हिस्सा मिलता तो फ़ौरन ही आपके साथ हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते और धमकियाँ डरावे। अल्लाह ताला कहते हैं ये जुमला, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना वा मौलाना वा अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। याद कर लीजिए ये जुमला, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। क्या? आइए सुनिए। आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए के कोई चीज़ पहुंच ही नहीं सकती, यानी कोई तकलीफ आ नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। वो हमारा कारसाज और मौला है, और मोमिनों को अल्लाह ताला की जात पर ही भरोसा करना चाहिए। इस चीज ने सहाबा को भी और अहले ईमान को बहुत निडर बना दिया। मैदान जंग में भी जाते थे तो गुनगुनाते हुए जाते थे कि मौत आनी है तो आनी है, नहीं आनी तो नहीं आनी। कुल हल तरब्बसूना बिना, कह दीजिए तुम हमारे बारे में जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक में इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या? कि या तो अल्लाह अपने पास से तुम्हें कुछ सजा दे या हमारे हाथों से। बस एक तरफ तुम मुंतजर रहो, दूसरी जानब हम भी तुम्हारे साथ मुंतजर हैं। क्या पता चला कि इस मोमिन के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। शहीद हो गया तो अल्लाह की जन्नत है, जिंदा हो गया तो गाजी बन के फिरेगा दुनिया में। फिक्र तुम अपनी करो। फलन फी को तो नौ करहन, कुछ लोग खुद नहीं चाहते थे, माल भेज देते थे कि चलो कुछ तो हिस्सा हमारा डलता रहे, और दिल में बड़ा कुड़ते थे, हाय फिर पैसा देना पड़ रहा है, हाय फिर खर्चा होगा, हाय फिर। तो अल्लाह कहते हैं कह दीजिए तुम खुशी या नाखुशी किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज़ ना किया जाएगा। यकीनन तुम फासिक हो। कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहली से ही नमाज को आते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं। मेरे कुछ कहे बगैर इस पे गौर कीजिएगा। बस आपको इनके माल और औलाद ताज्जुब में ना डाल दें। अल्लाह की चाहत चाहिए कि इससे इन्हें दुनिया की जिंदगी ही में सजा दे और इनके कुफर ही की हालत में इनकी जाने जाएं। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं, यानी सिर्फ बातों की हद तक ये तुम्हारे हैं, वरना इनका हाल क्या है? जरा सा मौका आए तो ये तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ ना कर दे। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई सर छुपाने की जगह पा भी लें, तो भी इसकी तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग छूटें। यानी जान इनको बड़ी प्यारी है, ومنهم من يلمزك في الصدقات. میدان جنگ میں اللہ کے نبی پر الزام بھی لگا دیتے تھے کچھ دل کے کھوٹے لوگ کہ کچھ پیسے یہ ادھر ادھر کر ہی لیتے ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں, اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں, اگر اس میں سے کچھ نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے. اگر یہ لوگ اللہ رسول کو دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے, اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی, تو ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں. کیا پتہ چلا کہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے, اچھے گمان کے ساتھ رہیں. اگلی آیت نوٹ کیجئے, صدقات یعنی زکوٰۃ کے مصارف. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دیں کس کو نہ دیں, تو آیت 60, انما صدقات للفقراء والمساکین, صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ علم و حکمت والا ہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے. یعنی آپ کے بارے میں ذرا دیکھیے, یہ رائے کسی طرح سے بھی سجتی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں, وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے, اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. تدبر اور عمل. اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگیں, یقیناً وہ آپ کو شہداء کے مقام تک پہنچا دے گا. شرط ہے کہ آپ اندر سے سچے ہوں, اپنے مال اور اولاد کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں کہ آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں ان کو خوش کرنے کے لیے. دنیا کی بجائے دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے تو اور کچھ کرنے کو دل کرے گا. قرآن پاک سے رہنمائی, اللہ کے دین کا غلبہ مومن کی خوشی کا باعث اور منافق کی ناخوشی کا سبب بنتا ہے. مومن کو نماز سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز سے کامیابی ملے گی. غافل اور منافق کی صفات میں سے ہے کہ اگر اسے دنیا مل جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہوتا ہے. غور و فکر کی بات ہے, کافر کے اعمال اگر اچھے بھی ہوں تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی آخرت میں اس کے اعمال اس کو کوئی فائدہ دیں گے. ایمان والے کو اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس کے صدقے اور خیرات کو آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے, وہاں بڑھا چڑھا کر اجر دے گا. تاوان سمجھ کر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. منافقین کے مال اور اولاد پر حیرت اور تعجب نہ کریں کیونکہ ان پر رشک کرنے کی کوئی وجہ نہیں. انسان ان چیزوں کا بندہ اور غلام ہے جو وہ چاہتا ہے, کیونکہ غلامی حقیقت میں دل کی غلامی ہے یعنی نفس کے پجاری. گستاخ رسول کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا جاتا تھا, آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو ہی رہا ہے واقعات کو پڑھتے سنتے, لیکن کتنا حلم تھا آپ کے اندر, کتنا شعور تھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کچھ اور باتیں ان کی بتاتے ہیں. آیت 62 سے, یحلفون باللہ لکم لیردوکم, محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں, حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضا مند کرنے کے زیادہ مستحق تھے. جھوٹی قسمیں کھا کر خوش کرنا یہ منافقوں کا وتیرہ ہے. الحمدللہ آیت 62 پہ سلاس ہوا, اور اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیے, اللہم صلی علی محمد. اب ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہو سکتا ہے کہ اپنے حساب سے دھوکہ دینے کی کوشش کر لیں, لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ 63, علم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو. کیا پتہ چلا کہ ہر سننے والا اپنے دل اور دماغ کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے, دوسروں کو وہ بات محسوس بھی نہیں ہوتی اور وہ محسوس کر لیتا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے اللہ اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے. تبوک سے واپسی پہ راستے میں خوش گپیاں کرتے تھے, اسی کی طرف اشارہ ہے. तुम बहाने ना बनाओ। यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर कर भी लें तो कुछ लोगों को इनके जुर्म की संगीन सजा भी देंगे। आगे एक लिस्ट है लंबी कि जिसमें निशानियां बताई गई मुनाफिकीन की और उससे आगे फिर मोमिनीन की। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद। तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक ही हैं। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने इन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार हैं। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों औरतों और काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। वही इन्हें काफ़ी है, इन पर अल्लाह की फुटकार है और इन्हीं के लिए दायमी अजाब है। अपना मुहासबा कीजिए, इनमें कोई चीज़ भी अगर ढके छुपे भी आपको अपने अंदर दिखे तो फौरन दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा तख़्खिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक। अल्लाह ताला के ये वादे सच्चे हैं, ईमान वालों के हक में भी और मुनाफिकों के भी। आगे कुछ फिर इनकी मजीद निशानियाँ। कल लजीन मिन क़ब्लिकुम, मिसल इन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुमसे वो ज्यादा कुव्वत वाले थे और ज्यादा माल और औलाद वाले थे। बस वो अपना दुनिया का हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया। जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फायदा मंद हुए थे और तुमने भी इसी तरह मजाकाना बहस की जैसे कि उन्होंने की थी। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। क्या इन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुंची? कौम नूह, आद और समूद और कौम इब्राहिम और अहले मदियन और वो बस्तियां जो उल्टी की गई, कौम लूत की तरफ इशारा। इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे थे। अल्लाह ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया था। क्या पता चला कि हर दौर के चुटलाने वाले बुरे अंजाम से दो चार हुए? इसलिए ऐ मक्का वालों, तुम अपनी फिक्र करो। अब पिछली लिस्ट से अपोजिट लिस्ट। वल मोमिनून वल मोमिनात, मोमिन मर्द औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों की पाबंदी बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और इसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे वाला है। मुहासबा कीजिए अपना। इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ताला ने इन जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। خالدین فیها و مساکن طیبتا فی جنات و رضوان من اللہ اکبر۔ دوسری دفعہ رضوان کا لفظ اس بارے میں آ گیا، دیکھیے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے پیاروں کو جنت سے محروم نہ کرنا۔ تدبر اور عمل کی بات ہے، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے اور دیتے رہنا، کیونکہ منافقین صدقہ دینے سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں تاکہ نفاق سے پاک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ وہ آپ سے دونوں جہان میں راضی رہے، اور اپنے پیاروں کو بھی دعائیں دیا کریں۔ قرآن پاک سے رہنمائی۔ مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رکھتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں نجات رسولوں کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ لوگوں کی خود ساختہ تفسیروں سے۔ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے والی صفت ہے۔ غور و فکر کی باتیں، مومن اللہ اور رسول کی رضا پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے، یعنی جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایمان والوں کے دل باہمی محبت و الفت اور مہربانی کے سلسلے میں جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑا رکھے۔ اب ڈائریکٹ آیت ہے، آیت 73 دیکھیے، بڑی اہم آیت ہے سورۃ توبہ کے ناطے سے۔ یا ایھا النبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما واہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ کیسے پہچانو ان کے نفاق کو؟ یحلفون باللہ ما قالو، अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि यकीनन कुफर का कलेमा इनकी जुबान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए हैं और उन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा न कर सके। ये सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और इसके रसूल ने दौलतमंद कर दिया। अगर आप ये भी तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़े रहें तो अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा और जमीन भर में इनका कोई हिमायती और मददगार ना खड़ा होगा। और इनमें से बाज वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से माल देगा तो हम जरूर सदका खैरात करेंगे और पक्की तरह नेकुकार हो जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया तो ये इसमें बखीली करने लगे। ना मुहासबा करें, कोई नेकी की नीयत करके भूले हुए तो नहीं है? ऐसे अल्लाह से किए हुए वादे जब पूरे ना किए जाएं तो इसकी सजा क्या मिलती है? फाकबहुम निफाकन फी कुलूबिहिम, बस इनकी सजा में अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक डाल दिया अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे के खिलाफ किया और क्योंकि वो झूठ बोलते रहे। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला को इनके दिल का भेद और इनकी सरगोशी सब मालूम है और अल्लाह ताला गैब की तमाम बातों से खबरदार है? जो लोग इन मुसलमानों पर ताना जनी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, और इन लोगों पर जिन्हें सिवाय अपनी मेहनत मजदूरी के और कुछ मुयस्सर ही नहीं, बस इनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इनसे तमस्खुर करता है, इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। क्या पता चला कि मुनाफिकीन की एक आदत है कि दूसरों को भी नेकी करता देख नहीं सकते और बहाने बहाने से उनकी हिम्मत तोड़ते हैं? नबी का प्यार देखिए कि फिर भी उनके लिए इस्तगफार करने को तैयार थे अब्दुल्ला बिन उबई, और कुछ ऐसे लोगों के लिए जब आपने इस्तगफार करनी चाहिए उनके जनाजे की नमाज पे तो आयत उतर गई, इनके लिए तू इस्तगफार कर या ना कर। अगर तू 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तगफार करे तो भी अल्लाह इन्हें हरगिज ना बख्शेगा, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से कुफर किया है। ऐसे फासिक लोगों को रब्बे करीम हिदायत नहीं देता। पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठ रहने पर खुश हैं, नोट करिए, नेकी से दूर है घर बैठते हैं कितने खुश हैं। अल्लाह ताला हमें नेकियों से पीछे रहने पर नहीं, नेकियां करने पर खुश होने वाला बना दे। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद रखा, उन्होंने कह दिया इस गर्मी में मत निकलो। कालू ला तनफिरू फिल हर्री कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन लौ कानू यफ़क़हून, कह दीजिए दोजख की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश के वो समझते होते, पस इन्हें चाहिए क्या कि बहुत कम हंसे और बहुत ज्यादा रोएं बदले में इसके जो ये करते हैं। वलयदहकु कलीलन वलयबकु कसीरन, आज तो हंसने हंसाने का कल्चर है, हर वक्त फन, हर वक्त पार्टी, हर वक्त हंसी मजाक। अल्लाह कहते हैं कि रो ज्यादा हंसो कम। बस अगर अल्लाह ताला आपको इनकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाजत तलब करें तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और ना तुम मेरे साथ दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मर्तबा ही बैठ रहने को पसंद किया था, बस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। लिखिए तुम मुश्किल वक्त पर ना निकले, अब आसानियों में घर बैठो। अल्लाह अकबर। और फिर हतमी आयत उतर गई कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम, इनमें से कोई मर जाए तो आप इसके जनाजे की हरगिज नमाज ना पढ़ें और न इसकी कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और इसके रसूल के मुनकिर हैं और मरते दम तक बदकार और बेइताअत रहे। आपको इनके माल और औलाद कुछ भी भले न लगे, अल्लाह की चाहत यही है कि इन्हें इन चीजों से दुनियावी सजा दे और ये अपनी जाने निकलने तक काफिर ही रहेंगे। जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो इनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुख्सत ले लेता है हमें तो बैठ रहने वालों में ही छोड़ दीजिए, यानी जितनी सहूलतें ज्यादा, जितनी गाड़ियां ज्यादा, जितने मुलाजिम ज्यादा, जितनी बेफिक्री उतनी दीन से दूरी, क्योंकि पैसे के साथ इंसान बहुत सारी बेकार चीजों में शामिल हो जाता है, अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है, नज़ाकत आ जाती है, धूप अच्छी नहीं लगती, पैदल चलना अच्छा नहीं लगता। तो तदब्बुर और अमल की बातें, जिहाद में हिस्सा लें ख्वाह चंद कलिमात के जरिए क्यों ना हो, और अगर कभी मौका बने इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करके अपनी आंखों पर जहन्नुम को हराम करा लीजिए। चुपके से कोई इबादत करें जिसे अल्लाह के सिवा कोई ना जानता हो और आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से उसका अजर पाना चाहें। कोई ऐसा काम करें जो आपके नफ्स पर मुश्किल हो, जिसके लिए आपको अपने राहत और आराम की कुर्बानी देनी पड़े, और फिर चुपके से मुस्कुरा दीजिए। इस वक्त भी मुस्कुरा दें अगर थक रहे हैं तो। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से रहनुमाई, जो सीधे रास्ते पर चलना छोड़ देता है उसे अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा मिलती है कि इसका दिल निफाक की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। इसलिए नेकियां करना ना छोड़े, चाहे अच्छा लगे चाहे मुश्किल लगे, हालात अच्छे हों के बुरे हों। अल्लाह की राह में थोड़ा सा नेक काम करने से भी मत शर्माएं, इसलिए कि काम के पीछे दिल का जज्बा होता है, ना कि कमी और ज्यादती। अल्लाह की इताअत और इबादत को नापसंद करना असल दिल के बीमार हो जाने की निशानी है। गौर व फिक्र, नेक कामों में दूसरों की मदद और हौसला अफजाई कीजिए। ज्यादा हंसी मजाक को आदत बना लेना नापसंदीदा है, क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा बना देता है। मुनासिब मौके और माहौल मिलने के बावजूद इबादत और नेक काम ना करने से अमल की तौफीक छिन जाती है। मुसलमान किसी से मोहब्बत और नफरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। अल-हुब्बु फिल्लाह वल-बुग्ज़ु फिल्लाह। और अब आगे पारे की आखिरी आयत, आइए देखते हैं आयत 87 से ऑनवर्ड। रतु बियन यकूनु माल खवालिफ, ये तो घर रहने वाली औरतों का साथ देने पर रीझ गए और इनके दिलों पर मोहर लगा दी। क्या है मोहर? नेकी करने को दिल ना चाहे और गुनाह करना अच्छा लगे। आप वो कुछ समझ नहीं रखते, लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं। यही लोग भलाइयों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने वो जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं, और यही बड़ी कामयाबी है। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह हमें भी तौफीक दे। बादिया नशीनों में से उज़र वाले लोग हाजिर हुए। अब जब आप वापस आए तबूक से, तो कुछ लोग अपने अपने उज़र बहाने लेकर आपके पास आ रहे हैं और सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। कुछ को तो ये भी तौफीक नहीं होती, लेकिन ये अल्लाह के नबी के गुड बुक्स में रहना चाह रहे थे, इसलिए आकर अपने बहाने देते सच्चे झूठे। क्या कहते? हाजिर हुए कि इन्हें रुख्सत दे दी जाए और वो बैठ रहे, जिन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से झूठी बातें बनाई थी। अब तो इनमें जितने कुफार हैं, इन्हें दुख देने वाली मार पहुंच कर रहेगी। जयीफों पर और बीमारों पर और जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि वो अल्लाह और इसके रसूल की खैर ख्वाही करते रहें। ऐसे नेक कारों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत और रहम वाला है, यानी अल्लाह ताला बंदे के उज़र और बहाने नहीं, उसकी बीमारियों, उसकी परेशानियों और उसकी मजबूरियों को खूब अच्छा जानता है। तो फिर सवाल यह है कि किसकी पकड़ है और किसकी हरज नहीं, यानी एक और गिरोह है। वलाल्लज़ीना इज़ा मा आतौक, हाँ इन पर भी हर्ज नहीं जो आपके पास आते हैं कि आप इन्हें सवारी मुहैया कर दें। तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ नहीं पाता। इन्नमा सबीलु अललज़ीना यस्ताज़िनूनक वहुमग़नियाउ रदू बिअन यकूनू माल ख़वालिफ वतबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यालमून। हाँ इन पर कोई हर्ज नहीं जो आपके पास आते हैं कि आप इन्हें सवारी मुहैया कर दें। तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ नहीं पाता। तो वो रंजो गम से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। बेशक इन लोगों पर तो राह इल्ज़ाम है, और इन्हीं पर है जो बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाज़त तलब करते हैं, यानी एक्सक्यूज़ कर दें, एग्जेम्प्ट कर दें हमें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी ज़ात पे लगे कितना खर्चा, कितना वक्त लगाते हैं, कितना माल लगाते हैं, और अल्लाह के दीन के साथ क्या कंजूसी हैं। तदब्बुर का नुक्ता है। ये खाना नशीन औरतों का साथ देने पर खुश हैं, और इनके दिलों पर मुहरे खुदाबंदी लग चुकी है, जिससे वो बहस बे इल्म हो गए। अल्लाह ताला हम ऐसे लोगों में शामिल ना करें। तदब्बुर और अमल। اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اصلح لي قلبي، دل کھول کر یہ دعائیں مانگے، کسی وقت بھی ہدایت سے دوری ہو سکتی ہے اور ہم جنت سے دور ہو جائیں گے۔ اطاعت الہی اور کار خیر میں بڑھتے جائیے۔ معمولی اعمال کو کافی سمجھنا مومن کی صفت نہیں، دنیا میں بھی تو سٹیٹس کانشیس ہیں، آخرت کے لیے بھی ہو جائیے۔ دل کی اصلاح کے لیے کچھ عملی کام کریں، مثلاً قبرستان کی زیارت کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، قرآن سے رہنمائی. اپنے مال کو ان جگہوں پر خرچ کیجئے جو اللہ رسول کو پسند ہوں. چھوٹے عذر نہ پیش کریں اور نہ دھوکہ دیں، کیونکہ اللہ رازوں اور چھپی باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اعمال کی اصلاح کا سبب ہے. غور و فکر کی چند باتیں. اپنی نیت اور ارادے کو اور اپنی محبت کو اللہ اور رسول کے لیے خالص رکھیے. اچھے کام کی سچی نیت اور پکے ارادے سے بھرپور کوشش کے بعد اگر پورا نہ کر سکیں تو بھی اللہ سے اجر کی امید رکھیے. عمل سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا پیمانہ ہے. محض باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ باتوں سے کوئی بھی پرکھا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. الحمدللہ بنعمت الاسلام پارا پورا ہوا. متروک سنتوں میں سے آج وہ سنت ہے جس پہ میں آپ سب کو توجہ دلاؤں گی، اور وہ کہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو عموماً اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ عورتیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، کسی کو ہلی ہلی پڑی ہوتی ہے، کوئی گھبراہٹ میں ہے، لیٹ ہو گئے، جلدی کرو، بیلٹ باندھو، یہ کرو، جوتا پہنو، اور پھر ہم وہ قیمتی دعا بھول جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت تھی. انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں یا رہی ہوں، میرا پورا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو آپ نے فرمایا، اس وقت کہا جاتا ہے، یعنی اس کی دعا کے جواب میں فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، نوٹ کیجئے، فقد ہدی یا وقوفی یا وبقیا، ایک جگہ آتا ہے ہدی توقفی توبقیتا، اب تجھے ہدایت دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا. یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے. تو اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے، تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا؟ کسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ تیری گرفت اور تیرے چنگل سے آزاد ہو گیا، یعنی بچا لیا گیا. یہ خوبصورت روایت ابو داؤد میں 5095 پہ ہے. تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دعا اگر آتی بھی ہے تو مانگنا نہ بھولا کریں. کتنی بہنیں ہیں اور کتنے ساتھی ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیشہ دعاؤں کی یہ حفاظتی جیکٹ پہن کر گھر سے نکلنے والے لوگوں میں شامل کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.